ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को बहुत 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 खजाना दिया है। और जो खजाना बाबा से हम बच्चों को मिला है उस खजाने की हम कीमत कैसे करें। वो खजाना ऐसा नहीं है जो हम तराजू में रखे और तोले कि कितना किलो है। और वो खजाना किसी दुकान में भी नहीं मिल सकता, खरीद भी नहीं कर सकते। और वो जो खजाना बाबा से मिलता है वो कोई लूट भी नहीं सकता है। तो कितना वैल्यूएबल खजाना है बाबा से हम बच्चों को मिलता है। हमें देखना है कि जो बाबा से मिला है उस खजाने की हम कितनी वैल्यू करते हैं। पुरुषार्थी जीवन में हम सभी चलते चलते थक भी जाते क्योंकि एक दो दिन का रास्ता नहीं है। ये पुरुषार्थ का जो रास्ता है बहुत लंबा रास्ता है और ये भी मालूम नहीं है कितना लंबा। कुछ मालूम हो ना कितना किलोमीटर है तो पता चले कि अभी इतना बाकी है, वो भी पता नहीं है। और कब मंजिल आएगी उसका डेट का भी पता नहीं है। बाबा के बन गए चल रहे हैं, चल भी रहे हैं, औरों को देख भी रहे हैं, और भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, और भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे जीवन के अंदर हमने जो प्राप्त किया है वो क्या रियली जो मिला। थोड़ा और आगे आ जाओ ना, सभी पीछे पीछे नहीं बैठो, आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ तो बाकी वाले पीछे बैठ गए। एकदम सभी आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, एकदम आगे आ जाओ, एकदम आगे। और जो जो हाँ जो नीचे बैठ सकते वो नीचे आ जाओ, हाँ सोफा छोड़ दो, बूढ़े होते हैं तो आधार चाहिए ने। और आगे आ जाओ, और आगे, क्योंकि अभी और आएंगे ना तो जगह दे दो सबको। तीसरी लाइन कर दो भाई लोग, आ जाओ वहां से, हाँ नजदीक 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 आ जाओ। माताएं भी ठीक तीन लाइन कर दो। सब सीट पर सेट हो जाओ। ये दरवाजा बंद कर दो, यहां से कोई ना आवे अभी, उसको बंद ही कर दो, स्टॉपर लगा दो। अच्छा तो क्या, हाँ जो खजाना मिला है उसकी हम वैल्यू करें, उसकी हम कीमत करें। वो कीमत कैसे की जाए, किसके पास जावे, कौन हमें खजाने की वैल्यू करके देगा। ये दुनिया के जो मनुष्य है वो हमें मिले हुए खजाने की कीमत करके नहीं दे सकते। और हम खुद भी उसकी वैल्यू करे तो कैसे, खुद को ही करना पड़ेगा और कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपने कितने साल में क्या लिया वो हमें क्या पता, किसने कितने साल में कितना लिया वो दूसरों को तो पता नहीं, खुद को ही पता है। कई लोग सालों से बाबा का ज्ञान लेते हैं परंतु खाली के खाली वैसे के वैसे, और कई नए बाबा के बच्चे होते हैं वो बहुत 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 उमंग उत्साह में आ जाते और फास्ट दौड़ते। तो ये तो रास्ता है, लंबा रास्ता है, हम सभी के आगे भी बहुत गए हैं, हम लोगों के साथ भी बहुत चल रहे हैं और हमारे पीछे भी बहुत आने वाले, अभी और पीछे भी आएंगे। अंत तक बाबा के परिवार में आत्माएं आती रहेगी, ज्ञान लेती रहेगी, पुरुषार्थ करती रहेगी, प्राप्ति करती रहेगी, परिवर्तन करती रहेगी और बाप का परिचय सबको देती रहेगी। पर मुख्य बात है, बाबा ने जिस दिन बाबा आए उस दिन से कहा है अपन को पहचानो, खुद को पहचानो। तो पहले तो ये देखना है कि मैंने अपने आप को सही रूप में पहचाना है। इतना नहीं कि हाँ हमको पता चल गया मैं बिंदी हूं, बाबा ने कहा तू आत्मा बिंदी है तो मैंने तो समझ लिया मैं बिंदी हूं, इतनी समझ बस नहीं है। मैं आत्मा बिंदी हूं वो जो हमने समझा उतना इनफ नहीं है, उतना बस नहीं है, परंतु मैं आत्मा इस ड्रामा में कितनी वैल्यूएबल, कितनी कीमती आत्मा हूं। मैं आत्मा नई दुनिया की शुरुआत में पार्ट प्ले करने वाली आत्मा हूं, तो मैंने वो तैयारी की है, मैंने वो पार्ट को समझा है। मैं सतयुग की सीट पर बैठ के करूंगी क्या, वो बात को मैंने समझा है, वो बात को मैंने अपने आप में रियलाइज किया है। उसके लिए हमें डीप में टाइम देना पड़ेगा, हमें अपने आप से, क्योंकि झुंड का झुंड परिवार चल रहा है, पर हमें तो बाबा कहते अपन को पहचानो, माना मेरे को खुद देखना है कि मुझ आत्मा में जो संपूर्णता के संस्कार थे उस संपूर्णता के संस्कार में अभी बाकी क्या क्या रहा हुआ है। जो सतयुगी दुनिया के देवी देवता है उनकी महिमा हम करते हैं सर्व गुण संपन्न, तो मुझ आत्मा में वो सब गुण आ गए हैं। 16 कला संपन्न, 16 कला, तो मेरे में सब कलाएं आ गई है। संपूर्ण निर्विकारी, तो सब विकार मेरे में से चले गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, मैंने अपने जीवन में वो मर्यादाएं धारण कर ली है तब मैं देवी देवता बन सकूं, ये चेक करने का है ना। ऐसा ना हो कि सीट में बैठने का समय आए तभी हमें पता चले अभी मेरे में ये कमजोरी तो रह गई है, फिर टाइम नहीं मिलेगा वो कमजोरी को निकालने का, टाइम अभी ही है कमजोरी को निकालने का। और दूसरा क्या है कि हम जब बाबा के बनते हैं तो हम बहुत बहुत खुश हो जाते कि भगवान मिल गया। हम किसी को जब ड्रामा समझाते हैं ना तो कहते हैं ड्रामा की शुरुआत में सतयुग था, फिर त्रेता हुआ, फिर द्वापर हुआ, फिर कलयुग हुआ और अभी क्या है, अभी क्या है, सबको याद रहता है, संगम पर है रहता है, याद रहता है मैं संगम में हूं, कभी कभी नहीं रहता। आपको ये पता है, एक मैं गहरी बात सुनाना चाहती हूँ आज, कि ये जो संगम है ना, उसमें भी पांच युग है, ये मालूम नहीं? संगम में पांच युग है, किसको मालूम है? नहीं नहीं, पूरे पांच तो है, वो तो सबको मालूम है। मैं थोड़े जो सब वो ही बात सुनाऊंगी, कुछ और सुनाऊंगी ना, आई हूं तो हु? तो जो आपको पता है संगम में पांच युग है, आपको भी पता नहीं? पहली बार सुना? अब मैं सुनाएगी तो आप कहेंगे सच्ची बात है। थोड़ा और आगे आ जाओ, और आगे आओ भाई, नजदीक आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। ओ देखो भाई लोग भी, आप नजदीक आओ, डरते क्यों? हम स्वामीनारायण धर्म के थोड़े। हाँ पता नहीं है ना, मैं आज बताती हूँ आपको एक गहरी बात। हा? बहुत मजा आएगा, आप ध्यान से सुनना, सो नहीं जाना, रात है तो नींद आ जाएगी नहीं तो। हा? तो संगम युग जो है ना, उसमें पांच युग है, और वो पांच युग से हम सभी पास होते हैं। ये नई बात सुनाती मैं आपको। हा? हम जब ज्ञान में आते हैं ना, ओहो वाह वाह मिल गया, सतयुग में आए, खुशी 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 खुशी, इसको सुनाएंगे, इसको सुनाएंगे, इसको सुनाएंगे, सतयुग बस। सतयुग आया नहीं है, पर हम ज्ञान में आए तो वो हमारा शुरू शुरू का समय है ना, वो सतयुग है। देखा, समझ गए ना? फिर एक दो तीन साल होते हैं ना, उसके बाद फिर ब्राह्मण परिवार में थोड़ा घुसते है। फिर ब्राह्मण परिवार में घुसे ना, तो फिर पता चलता है इसमें ये अवगुण है, ये ऐसा शोभा वाले है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो फिर क्या हुआ, वो देखते देखते त्रेता में आ गए, क्योंकि अभी सबका थोड़ा थोड़ा देखने में आता है, सबके मूड देखने में आते हैं, अपना कोई भी तो उसकी थोड़ी असर होती है। तो थोड़ा दो कला संगम युग की भी सतयुग से उगे, थोड़ा उतर गए नीचे। फिर थोड़े दो चार वर्ष बाबा के बन गए, चल गए। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर संगम में द्वापर में आ जाते हैं। कैसे? थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है, ठीक है करते करने दो, हमने बहुत कर लिया, हमारी वैल्यू थोड़ी है, चलता है, करने दो, बुलाएंगे तो जाएंगे। देख लिया, देख लिया बाबा क्या है, ज्ञान क्या है, देख लिया बहनों को, देख लिया सबको, देख लिया। तो वो क्या है, फिर द्वापर युग में क्या करते हैं लोग, मंदिरों में जाते हैं, ये मंदिर में हनुमान का मंदिर, गणेश का मंदिर, सरस्वती का मंदिर, उसका मंदिर। तो फिर संगम में, फिर जब हम संगम के द्वापर में जब हम आते हैं ना, ये बहन को थोड़ा सुना के आएंगे, ये भाई को थोड़ा सुना के आएंगे, इसको थोड़ा सुना के आएंगे, ये सब हमारे मंदिर हो जाते हैं, थोड़ा दुख हल्का करते हैं। तो वो संगम का वो द्वापर हो गया, थोड़ा 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 दिल तो हल्का करना पड़ेगा, इतना हमने किया, हमारी क्या वैल्यू है, देखो तो सही, ऐसे ही। तो वो फिर मंदिर में थोड़ी शांति मिल जाती है, तो जो दूसरे दूसरे है ना उसको सुनाते, वो द्वापर का भटकना शुरू हो जाता है, उसे भी चैन नहीं आता, क्योंकि वो जिसको सुनाते वो भी तो खाली है बेचारा, वो हमको क्या देगा, वो भी तो दुखी है, सुनने वाला भी दुखी है। तो उसके क्या होता है, वो ठोकर खाते खाते फिर कलयुग में आ जाते, कुछ मजा नहीं आती, क्लास में जाने को भी इतना मजा नहीं है, सर्विस में भी इतना मजा नहीं है, पता नहीं अभी शरीर भी साथ नहीं देता है, लौकिक भी साथ नहीं देते हैं, कुछ वो योग में बैठते तो भी नहीं मजा आता है, अभी तो कुछ मजा नहीं आता है, पता नहीं अब क्या कब विनाश होने वाला होगा कि नहीं वो भी मालूम नहीं। तो कलयुग में आ गए एकदम, और फिर अचानक आंख खुलती है सच्ची, अरे ये क्या, ये तो ड्रामा है, बाबा आया है, एक मिनट चलता है, मैं क्यों ये सब देखता हूँ, मैं क्यों, अरे मैं बाबा से प्राप्ति करके एकदम मुझे ऊंचती उड़ती कला में जाना है। तो रियल संगम में आ गए, अनुभवी मुहूर्त बन गए, संगम में आ गए, ये मेरे बाबा का परिवार है, जैसा भी हो जो वो सब अच्छे है, मैं भी अच्छी, वो भी अच्छा, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, सब अच्छे थे अच्छे। तो फिर संगम में आ गए, रियल संगम। और रियल संगम में क्या होता है, अतिंद्रिय सुख के झूले में झूलने का। अच्छा है ना पॉइंट, सब पास होके आए, सच्ची सच्ची बिल्कुल सच्ची। तो हम सभी सतयुग संगम का, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पूरा करके अभी अभी टाइम वेस्ट नहीं करो, भटकना बंद। अभी आ गए संगम युग के भी, संगम में ये सब मेरा परिवार है। दुनिया में भी जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की दुनिया है, कुछ खराब कुछ बुरा है ही नहीं, सब अच्छे थे अच्छा। ओहो बस, अतिंद्रिय सुख के झूले में झूले, झाड़ू लगाए तो भी खुशी, बर्तन मांजे तो भी खुशी, खाना पकाए तो भी खुशी, खुशी ही खुशी, बस खुशियों में झूमते रहे, संगम का सच्चा सुख लेते रहे। आ गए सच्चे संगम में, अभी वापस नहीं जाना, सो सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, अभी अभी वो रिटर्न जर्नी नहीं, अभी सीधा परम धाम, फिर बाबा जहां भेजे। अच्छी बात है, अच्छी है ना? तो अभी कोई भी युग में नहीं भटकना संगम में। हा? कोई आके कहे ना, मैं आपको बताऊं, पता है मैंने तो सुना, अरे पता नहीं अब क्या होगा, क्या होगा मालूम नहीं है अभी। हाँ मैं भी ये सोचती हूँ, ऐसे नहीं कोई सुनाने आए ने, नहीं बोलो, अरे भाई अरे बहन आप क्यों सोचते हैं क्या होगा, वो बैठा है सोचने वाला, सोचने वाला बाबा बैठा है, जो होगा वो अच्छा होगा। मैं अपना हर घड़ी हर पल संगम का सच्चा सुख का अनुभव करो, तुम भी वही करो। चलो भाई छोड़ो बात, छोड़ नहीं दो किसी को, बेचारा दुखी छोड़ नहीं दो, उनको दुखों से छुड़ाओ, बोलो छोड़ो छोड़ो आ जाओ, चलो बैठ जाओ इस बोर्ड में, खुशी मनाओ। पर वो तो बहुत तंग करता है, क्या करूं। अरे भाई उसको योगदान दो तो तंग करना बंद हो जाएगा। हाँ। है ना? तो अभी जो समय है संगम का, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अभी वो घड़ियां चल रही है। हमें क्या पता अभी कि कब ये ऐसे ड्रामा अचानक, हमें पता भी नहीं था बाबा संगम युग रचेगा और आएगा और स्वर्ग की तैयारी करेगा, वो भी पता नहीं था न? उन्होंने शुरू किया, ज्वाइंट हो गए। तो अभी जो रिटर्न जर्नी है उसके लिए भी एकदम तैयार हो जाए। तो हम आपको यही प्रेरणा देने आए हैं कि बहुत भटके अभी मन का भटकना बंद, तन का भटकना बंद, संबंधों का भटकना बंद, बुद्धि का भटकना बंद। सेवा के लिए जाना है जाओ, मन सा सेवा करनी है करो, पर भटकना नहीं। भटकना होता है उसमें थकान होती है, और घूमना होता है उसमें थकान नहीं होती, दो फर्क नहीं है, भटकना और घूमना है, फर्क है ना शब्द में। भटकना है ना उसमें हम परेशान हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं कहाँ जा रहे, और घूमना है वो खुशी देता है। तो अभी हमारी घूमने की यात्रा है, भटकने की यात्रा नहीं है, खुशी मनाने की यात्रा है। बाकी आपको जो पूछना है पूछो, कुछ पूछते जाओ, मैं जवाब देती जाऊं, तो कुछ और आपको चाहिए वो मिल जाए, नहीं तो मैं तो बोलती रहूंगी और घड़ी चलती रहेगी। बोलो आपको क्या चाहिए।
बाबा ने नाम दिया
हाँ भाई का प्रश्न है कि मुझे बाबा ने वेदांती नाम दिया, बताओ मैं यहाँ पर 1965 में जब साकार बाबा थे तब आई थी और बहुत छोटा सा मधुबन था तभी, और ये जो कोने वाला रूम है ना यहाँ पर जब दादी प्रकाश में नहीं रहती थी वो वाले रूम में हमको एकोमोडेशन मिला था। उस रूम में चार बेड थे, वो कोने वाला रूम है ना उसमें चार बेड थे, तो मैं मेरी माताजी मेरा भाई और बहन चार हम उस रूम में रहे थे और ये हॉल तो यही था। और मैं तो बहुत सारे प्रश्न लेके आई थी पूछने के लिए कि पूछेगी आप भगवान कैसे आता है बताओ, प्रश्न लेके आई थी मैं कैसे मानू भगवान आता है। तो जब भी दादी जानकी के साथ आए थे, दादी जानकी बाबा के रूम में ले गए और दादी जानकी ने सबका परिचय दिया, हम आठ लोग थे, तो कहा कि ये बच्ची है ना वो शास्त्र पढ़ती है, वेद उपनिषद पढ़ती है और भगवान को ढूंढती। तो बाबा ने कहा अच्छा, ऐसे किया बाबा ने, अच्छा जैसे किया ने, तो बाबा गुम। मेरे को पिंक कलर का रोज का ढेर दिखाई पड़ा, जैसे फूलों का ढेर पिंक कलर का लाइट लाइट, और जैसे बाबा पता नहीं कहाँ गुम। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा कहते बच्ची भगवान मिल गया, तो मैंने ऐसे किया, वो सारे प्रश्न उठ गए, प्रश्न लेके आई थी ना वही उठ गए क्योंकि बाबा ने फटाफट अनुभव करा दिया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह को मुरली के बाद बाबा ने हम सबको खड़ा किया, सबको बोला अपना परिचय दो, और जब मेरे परिचय की बात आई ना तो कहा कि देखो ये बच्ची है ना शास्त्र पढ़ी हुई है, फिलोसफी पढ़ी हुई है। बाबा कहने लगे तो बाबा ये बच्ची को फिलोसोफर बच्ची कहेगा, कहते ये तो बहुत लंबा नाम है, बाबा ये बच्ची को अब देखते को बच्ची ने वेद उपनिषद भी पढ़े है ना, मैं कॉलेज में वो पढ़ती थी उसकी डिग्री ले रही थी। तो बाबा ने कहा अभी बाबा बच्ची को वेदों का अंत दे रहा है, वेदांति, वेदों का अंत मतलब वेद पूरे हो गए अभी फिनिश है, वेदों का अंत, ऐसे करते हुए मुझे नाम दिया वेदांति। तो बस उस दिन से नाम मिल गया वेदांति, रंजन, मेरा सही नाम रंजन है। पासपोर्ट में वो चलता है, मैं ट्रैवल करके आई तो रंजन आई, यहाँ वेदांती होगी। अभी बैंक में जाऊंगी साइन करने तो रंजन हो जाऊंगी, स्टेज पे लेक्चर करूंगी तो वेदांती हो जाऊंगी। ऐसा है तो ऐसे नाम मिला, ऐसे पूछते जाओ। जिसको जो पूछना है पूछो। बाबा के साथ का अनुभव जब मैं आई ने तो बाबा तो एकदम 90 एज थी, अराउंड 89 90 अर्ली। तो मैंने तो बाबा को एकदम एक्टिव भी, बूढ़े बाबा होते भी बहुत एक्टिव देखा है, और तो दूसरा मैंने देखा कि बाबा से आप कुछ छिपा नहीं सकते। मनुष्य देख के हम कुछ छिपा ले ना तो फिर हमको रियलाइज होता है हम कुछ छिपा नहीं सकते, ऐसे मेरे को अनुभव हुआ। ऐसे ही मैं बाहर बाबा की झोपड़ी के बाहर बाबा के साथ खड़ी थी तो मुझे ऐसे विचार आया खाली कि बाबा के साथ फोटो निकले तो कितना अच्छा। बोला कुछ नहीं, खाली विचार आया, उन दिनों में थोड़े मोबाइल थे जो फटाफट फोटो ले लो, कैमरा भी लेके घूमने की फैशन नहीं थी। तो विचार आया खाली, तो बाबा ने किसी को बुलाया, बोला जाओ वो चंद्रास बच्चे को बुला के ले आओ, बोलो कैमरा लेके आओ। मैं तो शौक, नहीं नहीं यहाँ यज्ञ का चंद्रास भाई, मेरा पिता नहीं, यहाँ यज्ञ में चंद्रास भाई है, यहाँ कहीं फोटो में होगा हा? चंद्रास दादा। तो उनको बोला, मतलब किसी को बोला के जाओ उनको बुला के ले आओ, वो कैमरा लेके आया, फिर बाबा के साथ मेरा फोटो निकला। अब फोटो निकल गया तो बाबा कहते, देखो बच्ची जिसके साथ फोटो निकला है ना उसको याद नहीं करना है, और कैमरे में जिसका फोटो नहीं निकलता है ना उसको याद करना है। यानी शिव बाबा जिसका, भाई थोड़ा पानी ला के देना जा, शिव बाबा को याद करना है जिसका फोटो नहीं निकलता, और ब्रह्मा बाबा जिसका फोटो तुम्हारे साथ आया उसको याद नहीं करना है। तो ऐसे कुछ भी हम सोचते थे और बाबा को जैसे पता चल जाता था और फटाफट बाबा उसका एक्शन लेते थे। फिर मैं जब ये ज्ञान में आई तो मुझे ज्ञान अच्छा लगा, पर ये ब्रह्मा कुमारी जो ड्रेस पहनते ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने पहले दिन ही सोच लिया कि ये ड्रेस वाली बहन के साथ कभी रास्ते पे भी नहीं चलूंगी मैं, ये कोई ड्रेस होता है क्या? ऐसे ऐसे ड्रेस, थोड़ा और आ जाओ, ऐसे जगह दे दो भाई, ऐसे ड्रेस वाले के साथ तो मैं चलूं भी नहीं, ब्रह्मा कुमारी के साथ। मुझे मतलब ज्ञान अच्छा लगा, कपड़े अच्छे नहीं लगे, ये ड्रेस तो क्या है ऐसा मन में रखा। वो तो अहमदाबाद में ही सोच चला था, अहमदाबाद में जब बहन को देखा ब्रह्मा कुमारी को, फिर जब यहां आई पहली बार, मैंने किसी को मेरा विचार बताया नहीं था, मैं ये कपड़े नहीं पहनू, मैं तो अपने नॉर्मल कपड़े पहन के आई थी, पर मैंने जो सोचा ना वो मुझे नहीं पता, बाबा को पता चल गया है। हम आठ लोग आए थे, आठ में से मेरे को बाबा ने कैसे संकल्प को कैच करके बाबा ने मुझे हट में बुलाया, बाबा ने टेलर को बुलाया, टेलर को बोलो इसका माप लेके दो जोड़ी कपड़े तैयार करके दे दो, ये बच्ची खाली डेढ़ दिन के लिए आई है, खाली डेढ़ दिन की छुट्टी घर से मिली थी। अभी जब ये बाबा ने बोला तो मुझे मतलब वो, क्योंकि हमने कभी मेरे पिताजी के साथ भी कभी मैं टेलर के वहां नहीं गई थी, माँ के साथ जाती, अभी ये भाई मेरा मेजरमेंट ले रहा ब्रह्मा बाबा के सामने। एक तो वो मुझे विचित्र लगा, अच्छा चलो मैंने सोच लिया भले कपड़े बन के आ जावे, इतना जल्दी थोड़ी सिलाई होगा, मैं तो चली जाने वाली हूँ। मैं तो रूम में चली गई, दो घंटे के बाद फिर बुलाया वो टेलर दो जोड़ी कपड़ा ले। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी गिफ्ट है, तो मैंने जल्दी टर्न होके मैंने कहा चली जाऊ, जाके बैग में डाल दो। बाबा ने कहा बच्ची सुनो जाओ रूम में जाओ पहन के आओ, बाबा देखना चाहता है। अब मेरी माँ को मैंने कहा मुझे सिखाओ कैसे पहनने का, मुझे साड़ी पहनना आता नहीं है। तो मेरी माँ को भी वो अभी जो ब्रह्मा कुमारी पहनते वैसा आता नहीं, तो वो मम्मा जैसी वो गुजराती साड़ी पहना दी। मैं बाबा की हट में पहुंची तो 10 लोग बैठे थे बाबा के साथ, तो मैं कोने में बैठ गई एकदम हट में। तो बाबा ने कहा खड़ी हो जाओ कुछ, अरे तुम तो कितनी अच्छी लगती हो, तू तो मम्मा जैसी लगती हो, तो बच्ची ये तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को ठीक है चलो अभी जल्दी जाऊं, जाके ये कपड़े निकाल बैग में रख के अपने पुराने वो कपड़े पहन के जल्दी मैं अहमदाबाद चली जाऊं, बस हो गया। बाबा कहते अरे बच्ची देखो बाबा बहुत खुश है, यही कपड़ा पहन के अहमदाबाद जाओ। आप सोचिए कि बाबा ने कैसा मेरा संकल्प कैच कर लिया कि मुझे ये कपड़े पसंद नहीं है। तो बाबा के साथ के जो आप अनुभव की बात कहते हो ने, तो ऐसे गहरे गहरे अनुभव थे। कि आप आपको सोचने का भी फ्रीडम नहीं है। तो गिरे ना भाई बीच में, तो ये बाबा के तो बहुत अनुभव है, पर और भी प्रश्न पूछते जाओ। हाँ अव्यक्त बाबा के, अच्छा अभी मैं तो साकार बाबा को भी देखा, साकार से अव्यक्त हुए वो भी देखा, तो मैं अहमदाबाद में थी और अहमदाबाद सेंटर से बड़ौदा में एग्जीबिशन रखा था, तो सरला दीदी जो है वो क्लास वालों को लेके और बहनों को लेके बड़ौदा एग्जीबिशन करने गई, तो मुझे अहमदाबाद सेंटर पे बिठा दिया कि तू संभाल। तो अभी मैं अकेली थी ने, तो मेरी बहन छोटी चंद्रिकाबेन जो अभी अहमदाबाद में है, उसको बोला कि तू भी इसके साथ रह जा, अकेली है इसके साथ रह जा। तो हम लोग रात को सोए हुए थे और 12 बजे किसी ने, ये साकार बाबा के समय की बात कह रही हूँ, उसमें अव्यक्त बाप दादा की बात आएगी, तो किसी ने दरवाजा नॉक किया, तो दरवाजा तो नहीं खोलते ना, हमने विंडो खोला, तो बोला सुनो सुनो बहन सुनो, बैड न्यूज बैड न्यूज बैड न्यूज। तो मैंने कहा ऐसे कोई रात को देखो दीदी नहीं है और ये, तो हमने देखा कौन है, तो हमारे राजयोगी कोई भाई जो बड़ौदा एग्जीबिशन में गया था उसका बेटा था, उसको मैं जानती थी। तो मैंने कहा भाई तू क्या कहता है बैड न्यूज, कहते आपका ब्रह्मा बाबा है ना वो मर गए। मैंने कहा तू क्या बोलता है, अभी उन दिनों में अहमदाबाद में भी यहाँ कहाँ वहां इतने टेलीफोन का सिस्टम नहीं थी, है ना। तो वो हमारा जो ज्ञान में चलने वाला फैमिली सेठ शाहूकार फैमिली था, तो उनके पास फोन था, तो यहाँ एक्सचेंज से उनको फोन किया गया कि जल्दी ट्रक भर के आइस भेजो। तो उसने ही बड़ौदा में उसके पिताजी को मैसेज भेजा कि सरला दीदी और सब वापस आवे, और ऐसा हुआ। फिर बॉम्बे में यहाँ वहां फोन टेलीग्राम जो भी, तो सबसे पहले तो मैंने जिसको न्यूज मिला वो सबसे पहले दौड़ के आया मेरे को कहने, और वो चला तो गया, परंतु सरला दीदी वगैरह 3 बजे रात को आ गए बड़ौदा से, और जल्दी जल्दी 1 घंटे में तैयारी करके यहाँ आने को निकल गए। अब मुझे वहां बिठा दिया कि चारों तरफ के सेंटर वाले अहमदाबाद होके जाएंगे, उनको खिलाओ पिलाओ ध्यान रखो तुम यहाँ बैठी रहो। अब मुझे होता था कि मैं लास्ट सरेंडर, ब्रह्मा बाबा की लास्ट, मैं और जयंतीबेन सरेंडर हुए, उसके बाद कोई सरेंडर नहीं हुआ बाबा ने शरीर छोड़ने तक, तो हम तो लास्ट हो गए। तो हमको तो बहुत दिल थी यहाँ आने की, तो बहुत लोग यहाँ आने लगे, सारे सुबह क्लास में जो आए उनको पता चला सब सब। मैं तो सारा दिन बैठी रही बैठी रही बैठी रही, रात को नेबर ने बोला सेंटर हम संभालेंगे, आप चाबी देके जाओ, हम आपको ट्रेन पे छोड़ देते, आप जाओ। तो हमको दूसरे दिन रात को चढ़ाया, तीसरे दिन हम आए। तो यहाँ पर बाबा का रखा हुआ था, और जो भी आते थे आके बैठते थे, फिर बाहर चले जाते थे, और एकदम ऐसा वाइब्रेशन था, फिर सब बैठे हुए थे। फिर अनंत किशोर दादा के योगल संतरी दादी ट्रांस में गए, और विश्व सॉरी विश्व किशोर दादा के, हाँ वो ट्रांस में गए, तो बाबा ने फिर मैसेज दिया सारा जो आगे करना है सब। तो मैं वो कोने में नीचे बैठी हुई थी, सब एकदम योग में थे, और मेरे को जोर से रोना आ गया, एकदम जोर से रोना आ गया कि अभी बाबा चला गया क्या होगा। तो मैं रोया तो सबको थोड़ा वो लहर तो आ जाती ना। उसके बाद हमने सारा जो सब कुछ हुआ वो देखा आंखों से, और तभी ही फाइनल सेरेमनी के, और सारे शहर में वो कार में लेके वो यात्रा की, वो यात्रा में भी हम पीछे पीछे चल रहे थे। तो उसके बाद अव्यक्त बाप दादा का जो पार्ट चलने वाला था वो उसी समय अनाउंस हो गया था कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, वो सारा प्रोग्राम का। तो इसलिए हमने वो ट्रांसफर का प्रोग्राम है ना, जैसे ट्रांसफर की सिचुएशन वो भी देखी है। तो उसके बाद तो हमारे लिए तो अव्यक्त बाप दादा तो जैसे साकार बाबा, ऐसे अव्यक्त बाबा बाबा 15-20 लोगों के लिए भी रूम में आ जाते थे, वही रूम में। हम तो वो रूम में बाबा को बहुत बार मिले, वो जो अभी बाबा का रूम है ना वो, हाँ हाँ उसी रूम में अव्यक्त बाप दादा आते थे। उसी नीचे वो है ना, नीचे वो छोटी गद्दी है, वहां बाबा बैठते थे और फिर मतलब गुलजार दादी बैठती थी और वहां बाबा आते थे और ऐसे मिलते थे हम लोग बाबा को। यहां से विदेश कैसे चले गए? कोई होता है चले गए, कोई का होता है भेजा, हमारा विचित्र है, न चले गए न भेजा गया। हमारा कैसा कि मैं अहमदाबाद मतलब 65 में मैं ज्ञान में आई, 6 मास में सरेंडर हुई और फिर वो 72 या ऐसे फिर मैं फिर बॉम्बे चले गए। तो बॉम्बे में बैठे बैठे मैं रोज रात को योग करती थी सारी दुनिया के लिए, वो विश्व के वो मैप के ऊपर योग करती थी, रोज एक एक देश को योगदान देती थी सोने के पहले, फिर सो जाती थी क्योंकि मेरे पिताजी के पास तो इतना पैसा भी नहीं था कि जो मेरे को कभी विदेश में सेवा के लिए भेजे। और उन दिनों में ऐसा सोच किसी का चलता भी नहीं था, विदेश में कोई सेंटर भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि भगवान आया वो सारी दुनिया को तो पता चलेगा नहीं, चलो मैं अपने मनसा से, तो तभी मैं ऐसे रोज योग करती थी, ऐसा 2 साल चला। मैं वो देश को कि आज मैं अमेरिका को योगदान दे रही हूँ, फिर बाबा की याद में मैं वो वाइब्रेशन भेजती थी, हे अमेरिका की आत्माएं जागो, बाबा आया हुआ है, अपना भाग्य बनाओ, हे अफ्रीका की आत्माएं जागो, ऐसे ऐसे मैप में जो इतना, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी तो किया नहीं था तो मुझे ज्योग्राफी का बहुत नहीं, वो मैप में जो शहर पढ़ती थी, जो देश पढ़ती थी, जो दिखाई पड़ता था गोल चौरस लंबा चौड़ा, ये कर दिया गड़बड़ गड़बड़ वाला जैसा भी, बस समझा नहीं समझा, क्योंकि हमने तो फिलोसॉफी किया था, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो किया नहीं था इतना। तो विश्व को योगदान बस। पर उसमें है ने, तो एक बारी बॉम्बे में बहुत सबसे पहला बड़ा मेला दिल्ली में हुआ था और सेकंड मेला बॉम्बे में हुआ था। तो जब बॉम्बे में मेला था तो मेरी ड्यूटी थी स्टोर कीपर, यानी जो स्टोर में सब चीज है उसको संभालना, और सारे मेला को जब दिल्ली में हुआ ना तब मुझे भेजा गया था फर्स्ट मेले में, वहां मेरी ड्यूटी थी सारे स्टॉल जो है उन लोगों को खुश रखने का, चाय पिलाने का, रात को भी जागने का, योग के प्रयोग करने का, वो सारा ड्यूटी। और फिर बॉम्बे में आया तो जैसे अपने घर में आके मैं बॉम्बे में थी, तब मेरा स्टोर की ड्यूटी थी सारा, वो सब चीजों को कंट्रोल करना। तो मैंने है ने तो सोचा कि मेरी दौड़ाभागी की ड्यूटी तो बहुत है नहीं, ऊपर सेंटर से नीचे आके स्टोर में चीज देकर ऊपर चले जाओ, मेरे को वहां ये ग्राउंड में तो इतनी ड्यूटी नहीं, ग्राउंड में मेरी खाली योगा कैंप की ड्यूटी थी, योगा कैंप योगा शिविर की, तो वो सारा अरेंज करने का था। तो मैंने नक्की कर दिया कि मैं ये 1 मास मौन रहेगी, मौन। तो मैं मौन, अभी ये मेला है ना वो बहुत नई चीज थी यज्ञ में, तो दादी प्रकाश मणि, निर्मल शांता दादी, फिर मनमोहिनी दीदी और जीव मनोहर सब बड़ी दादियां सब कोलाबा सेंटर पे वहां सब थे, 35 लोग हम एक घर में रहते थे, सब वहां थे क्योंकि सारी इतनी तैयारी के लिए। तो अभी मैं मौन, रोज रात को क्या होता था सारा काम पूरा करने के बाद सब बैठते थे दादी के पास, तो सब बातें करते थे, एक मैं शांति में बैठती थी, बोलती नहीं थी, तो सब बोल कहते थे इनको कहो बोले, तो दादी मेरे मुंह में अंगुलियां डालती थी, बोलो मुट्ठी बोलो बोलो, तो मैं कहती नहीं दादी, तो मतलब मैं बोलती नहीं थी और मैं कुछ कहना है लिख के देती थी और बाकी को कुछ कहना है वो तो बोल सकते हैं। तो मैंने ऐसे मौन का प्रयोग किया आत्मों का आह्वान करने लिए, मेले की सफलता के लिए, विश्व की सेवा के लिए। तो मेला पूरा होने के लास्ट दिन पर एक भाई आया और वो भाई ने ये मेले के एंट्रेंस का फोटो मांगा और उस वो सेंटर पे आया तो हमारे से बात हुई। तो हमने कहा किस लिए आपको फोटो चाहिए, तो बोला हमको मंदिर बनाना है। हमने कहा मंदिर क्या बनाना, देव बन जाओ, ऐसे बोल दी। अब मैं ये नहीं पूछती तू कहाँ से आया है, कौन है, कुछ नहीं। मैंने ऐसे ही कहा बैठ जाओ सुन लो। बोला कैसे बनते, मैंने कहा मैं सिखाती हूँ आओ बैठो। तो मैंने उनको जो ज्ञान सुनाया नहीं तीन दिन में, तो उसके बाद उन्होंने दादी प्रकाशमणि को बोला कि ये बहन को मैं अफ्रीका ले जाऊंगा। तो वो भाई ने मेरा वीजा निकलवाया मेरे को और शिलू बहन, हम दोनों गए थे, हम दोनों को टिकट भेजी और उस प्रकार से हम अफ्रीका में गए। उनके घर में जाके रहे पहले, फिर सेवाएं शुरू हुई विदेश, लंदन और लुसाका, दो साथ लंदन और लुसाका विदेश की पहली सेवा। 74 से बाहर सेंटर खुलने शुरू हुए। पहले जैसे जगदीश भाई है, निर्मला बहन, ये सब टूर पे गए थे पर कहां सेंटर नहीं खुला था। तो वो एक लुसाका में मैं गई, मैं और शिलू बहन, और लंदन में फिर चिंती बहन। तो ऐसे धीरे धीरे फिर निर्मला बहन और सब, फिर धीरे धीरे तो सब गए। वो भाई तो सेंटर का निमित्त बन गया ना। वो भाई खाली सेंटर का नहीं, वो भाई ने मेरे को अफ्रीका घुमाया और दादी को लंदन सेंटर खोल के दिया, सिडनी में खोल के दिया, गयाना में खोल के दिया, जर्मनी में खोल के दिया, सब सारे दुनिया के अलग अलग कोने में वो भाई ने सेंटर खोल के दिए। ऐसे है, मैं तो है ना सुबह से लेकर रात तक बाबा से ये कहता है, बाबा को बच्चा बनाने का आपको अनुभव है, मुझे पूछते हैं हर रोज। मैं हर संबंध का मेरा फिक्स है कि सुबह को जब उठेगी तो वो मेरा गुरु है, क्लास में बैठेगी तो वो मेरा टीचर है, दिन शुरू होगा तो वो मेरा बाप है, शाम का समय होगा तो वो मेरा लाइफ पार्टनर है, और रात होगी तो वो मेरी माँ है, और सो गई तो वो धर्मराज है, कुछ भी गड़बड़ हुई तो। तो ऐसे ऐसे मतलब मेरे सेटिंग है। और बाकी बाप को अपना बेटा बनाने की बात जो है ना, उसमें क्या है कि ये बाबा ने इसीलिए कहा है बेटा बनाने का, कि हम जैसे अपने बच्चों के लिए शेयर निकालते हैं तो हम बाबा के लिए भी निकाले, इसलिए बाबा कहते। पर मेरे लाइफ में कभी मेरे को कोई बच्चों की मिसिंग नहीं हुई है, क्योंकि मैंने बाबा को अपना लाइफ पार्टनर बनाया है, तो ये उनके जो सब बच्चे वो मेरे बच्चे। तो इसीलिए विश्व माँ, बाबा ने मुझे पहले ही शुरू में बोला था कि बच्ची जगत की माँ बनेगी, तो बाबा ने ये ब्लेसिंग दिया था इसलिए मुझे। तो ऐसे बाबा को बच्चा बनाने की बहुत जरूरत फील नहीं होती है। मैं बॉम्बे में सबसे पहला जब ही ट्रांस की गिफ्ट मिली तो मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे अनुभव शेयर करना नहीं आता था। वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस की स्टेज थी जो मैं रोती रोती तीन चार घंटे तक मैं बेहोश रही, मैं किसी को सुना नहीं सकी। चार घंटे के बाद मैं नॉर्मल हुई, वो पहला अनुभव था मेरा। मतलब मुझे खुशी तो हुई पर मैं डर गई थी कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ, ऐसे ऐसे था। तो थोड़ा डिफिकल्ट था पहला अनुभव। है कौन बोलता है, मैं चेहरा देखना चाहती हूँ। जो प्रश्न पूछते उसका चेहरा, हाथ ऊंचा करो, याद और सेवा का बैलेंस। आप मुझे ये बताओ, आपने वो कॉइन देखा है, पैसा पैसा कॉइन देखा है? कॉइन को कितनी बाजू होती है? दो बाजू होती है ना। कॉइन को दो बाजू क्यों होती है? एक ही बाजू क्यों नहीं है? दो बाजू है ना। आप ऐसे करके डालो, कभी एक साइड आएगी, कभी वो साइड आएगी, है ना। तो जो बैलेंस कैसे रखो, ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। सेवा योग के बगैर हो ही नहीं सकती, ऐसा संस्कार बनाओ। ये भाई हमको पांच छह दिन से गाड़ी चलाते, इनको पूछो, जब भी गाड़ी में बैठती हूँ कहती चलो बाबा, जब भी गाड़ी से उतरती कहती चलो बाबा, ऐसे करते हो ना, चलो बाबा। क्लास कराने जाती चलो बाबा, रूम में जाती चलो बाबा, सब बात में चलो बाबा। तो हम बाबा को अलग कैसे कर सकते हैं? तो जो भी शरीर से हम कर रहे सेवा, तो ऐसे थोड़े ही कि सेवा अलग चीज और बाबा। जो सेवा हम बाबा की याद बिना करे, वो सेवा में मजा भी नहीं है। तो कैसे क्वेश्चन निकाल दो तो इजी हो जाएगा। सुना, उसकी कोई थियरी है ही नहीं, कथा ही कथा। शरीर बिना सांस चल ही नहीं सकता है, चल सकता है? पांच मिनट सांस बंद करो तो शरीर सांस बिना चल ही नहीं सकता। ये जीवन बाबा की याद बिना चल ही नहीं सकता, ऐसा पक्का कर लो। अच्छा, एक बारी हम जब विदेश में गए ने, तो शुरू शुरू में नई नई सर्विस में गए, तो हम दो बहनें गई थी। तो जो दादा ने बुलाया था ने, वो तो सब जगह नहीं चलता था। साथ में उन्होंने किसी और भाई को कहा, इनको यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ। तो वो भाई है ना, वो जैसे ब्रिटिश मैन जैसा था, मतलब सब बात में पंक्चुअल, यू नो, 8 बजे माना 8 बजे, 9 बजे माना 9 बजे, एक्यूरेट। तो वो किसी शहर में हमको एग्जीबिशन कराने के लिए ले गया। तो हम जिसके घर में रहे थे उसके घर में हमको पहले खाना बना लेना था ना, तो दाल चावल रोटी सब्जी, और वो सब बना के हमको निकलने में खाली 2 मिनट देरी हुई कार में बैठने में। तो वो भाई ने इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा, उसकी वाइफ भी साथ में थी, वो बोलती थी गुस्सा नहीं करो, इतना गुस्सा करता, तुम ब्रह्मा कुमारी को टाइम की वैल्यू, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो, ऐसे हो वैसे हो, पता नहीं बहुत बहुत बोला 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 बोला। तो हम लोग चुप रहे, कुछ नहीं बोला, हमें उसका नेचर का पता नहीं था, वो रूल बहुत करता था। अब 2 मिनट लेट हुए तो कोई ऐसे थोड़ी दुनिया बदल जाएगी, पर वो मतलब इस प्रकार से, उसको ये नहीं पता वहां दाल उबल रही थी, वहां राइस हो रहा था, स्टोव बंद नहीं कर सकते, ये नहीं, वो तो आराम से बैठा था सिटिंग रूम में। हा? तो जैसे ये सिचुएशन जब आई तो हमें हुआ कि अरे ऐसे लोगों के साथ सेवा करनी, ये क्या करते। फिर जब मैं और शिलू बेन हम दो थे, तो फिर हम लोग जब एग्जीबिशन से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में आधे रास्ते पे इतना गुस्सा करके, एकदम गाड़ी खड़ी करके, वो दरवाजा खोल के, जैसे वो शिलू बेन का हाथ पकड़ के जैसे फेंकने तैयार हो रहा था, मैं पीछे बैठी थी, उसकी वाइफ पीछे बैठी थी, शिलू बेन बाजू में बैठी थी। तो उसने जैसे डोर खोला ना गुस्से में, तो मुझे लगा ये शिलू बेन को धक्का बक्का लगा दे। तो मैंने वो डोर खोले, उसके पहले जंप लगा के, वो उतर नहीं सके ना, ऐसे एकदम ऐसे हाथ डाला, और मैंने कहा मैं शेरनी शक्ति हूं, आप करके तो देखो, आप क्या करते हो मैं देखना चाहती हूँ। तो मतलब उस प्रकार से जैसे उसको मैंने रोका, तो फिर उसने वो स्टॉप हो गया, मतलब फिर शांत हो गया, गाड़ी चला ली। तो वो कुछ सेकंड के लिए जैसे डर भी लगा, परंतु दूसरी तरफ जैसे बाबा ने मदद की और उसके माइंड को कंट्रोल किया, उसको मैंने कहा चुपचाप गाड़ी चलाओ, जास्ती कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, आप शक्तियों को लेके निकले हो, आपको पता नहीं हमारे पास कितने काम होते, आके देखो किचन में क्या करना होता है तो पता चले। तो उसको एकदम चुप कर दिया, और तो मतलब ऐसे ऐसे नए नए लोगों के साथ जब हम काम करते हैं तो ऐसी बातें आती है, अनुभव नहीं होता है, फिर धीरे धीरे तो हो जाता, तो फिर बस ऐसे आती है, कोई ना कोई बातें आती है, पर बाबा की मदद से वो पार हो जाते, ऐसे तो बहुत अनुभव होते। अभी टाइम हो गया,
हर